नारायण 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 नारायण। भगवान की माया से या उसके स्वरूप से हम लोग परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र की अपनी एक भाषा होती है, अपना कहने का एक ढंग होता है। हर शास्त्र का अपना ढंग होता है, साहित्य शास्त्र का कहने का ढंग अलग होता है, दर्शन शास्त्र का कहने का ढंग अलग होता है, तर्क शास्त्र का कहने का ढंग अलग होता है, थियोलॉजी का कहने का, थियोलॉजी माने धर्म के ग्रंथों का कहने का ढंग अलग होता है, साइंस का कहने का अलग होता है, साइंस में भी फिजिक्स का कहने का अलग ढंग है, वही बात केमिस्ट्री किसी और ढंग से कहे, केमिस्ट्री में भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसका कुछ और रूप है, और जनरल केमिस्ट्री है उसका कहने के एक अलग रूप है। तो है बात वही, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग है। अगर ये बात हमको समझ में आ जाए तो ये जो शास्त्रों के भेद दिखाई पड़ते हैं या आपस में एक दूसरे की बात को न समझने के कारण एक विद्वेष विद्रोह जैसा पैदा हो जाता है, विकार जैसा, विरोध जैसा प्रतीत हो जाता है, वो नष्ट हो जाए। सृष्टि को ही लो, हम लोग जिस ढंग से भी सुन रहे हैं वो भी सृष्टि के वर्णन का एक ढंग है। सृष्टि को एक पेंडुलम की गति के समान समझ सकते हो, यहां से उसका न्यूटन है, ये जब यहां से किसी भी कारण से वो पेंडुलम यूं चला तो तब तक चलता चला जाएगा जब तक कि इसमें आगे बढ़ने की शक्ति है, पावर है। फिजिक्स में उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उस कैलकुलेटेड ढंग से ये पेंडुलम यहां तक पहुंचेगा। जैसे ही इसमें कब तक पहुंचेगा, जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसकी गति में, मोमेंटम में और उसकी गति से प्राप्त मोमेंटम में एक जैसा नहीं हो जाता है। जहां एक जैसा हो गया इसका मोमेंटम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो मोमेंटम, वो तो वहीं वो स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर होने के बाद अब इसका मोमेंटम तो खत्म हो गया पावर के खत्म हो जाने के कारण, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अब इसमें फिर से मोमेंटम चालू होगा। वो मोमेंटम फिजिक्स वाले स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एक सेकंड में इतना आता वो गणित है, वो पिंड कितना बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, एक सेकंड में इतनी गति आएगी, दूसरे सेकंड में इतनी गति आएगी, तीसरे सेकंड में, एक सेकंड को हमने छोटा मान लिया है। अगर एक सेकंड के भी 100 भाग कर दो तो उसके सब भाग में ये इसमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माने गति का बढ़ना, फिर इतना गति को, तो यहां तक आते आते उसमें मैक्सिमम गति आ जाती है। अब इस गति के फोर्स से फिर वो यहां से यहां पहुंचता है। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये यहां तक चल के आ रहा मोमेंटम, यहां पर पहुंचते पहुंचते जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा यही पेंडुलम, तो अब ये ऊपर ये उठता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको रोकने का प्रयास करेगा, उसको नेगेटिव ढंग से करनी। तो पुनश्च इसमें जो पहले मोमेंटम यद्यपि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण है, लेकिन एक जो वेस्टवर्ड गति थी उस वेस्टवर्ड गति को रोकने के लिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। जब फिर यहां पहुंच जाएगा तो वो दोनों प्रशांत हो जाएंगे बराबर होने पे। फिर इसके बाद चूंकि मोमेंटम इसका पहले वाला समाप्त हो गया तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फिर वो वहां से चलेगा, वो चलते हुए फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां से पहुंचा तो फिर यहां चला जाएगा। ये एक पेंडुलम की तरह या जैसे चिड़िया बनाई जाती टुक टुक ऐसे पानी ऐसे करती फिर खड़ी हो जाती फिर खड़ी हो जाती, उस तरह से वो पेंडुलम की गति है। ये सृष्टि भी पेंडुलम की गति के समान बनती है और जय श्री कृष्ण हो जाती है। इसमें पेंडुलम कैसा है, पहले सृष्टि फैलती है प्रसारण, और बाद में यही प्रसारण आकुंचन में बदल जाता है। तो जब तक सृष्टि यहां से यूं चली तो जब तक इसकी गति यहां तक पहुंच जाएगी फैलती हुई, और इसके पश्चात फिर वो सिकुड़ना शुरू करेगी। एक थ्योरी ऑफ बिग बैंग है, ये हमारे उपनिषद की थ्योरी से एकदम मिलती है। थ्योरी माने वेदांत की थ्योरी में ये समस्त सृष्टि उस अलक्ष्य से उत्पन्न हुई है। अब उसको बिंदु भी नहीं कह सकते हो, तो बिंदु में भी तो आकार होता, उसमें आकार ही नहीं, इतना सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म है कि वो अवांग मनस गोचर है। हमारे यहां उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कि जब जीवों के पहले के किए हुए संस्कार फल देने के लिए उन्मुख होते हैं उस समय उस परमात्मा में संकल्प होता है एको हम बहुश्याम प्रजाए। अब उसको क्या कमी थी कि हम एको हम बहुश्याम यसा एकाकी न रमते, ये सब की सब बातें एकदम गलत हैं, एकदम गलत है। लेकिन फिर भी इनके अलावा कहने का और उपाय नहीं, इसलिए एकदम सही भी है। और क्या बताएं, जब कोई बताने का मार्ग ही नहीं तो कुछ तो बताना पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं एको हम बहुश्याम प्रजा। अब उसमें संकल्प हुआ, अब संकल्प होने का उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो कहां से संकल्प करेगा। लेकिन मान लो कि और क्या कहे नहीं समझ में आता है, तो उसी तरह से कह दिया कि उसमें संकल्प हुआ कि मैं एक से बड़ा हो जाऊं, उसका एकाकी मन नहीं लगा। अब उसका मन नहीं लगा एकाकी, जब कहते हो कि आत्मानंद है, जब यदि लोग आत्मानंद प्राप्त कर लेते हैं तो वो कुछ और बाहर देखना नहीं चाहते, तो परमात्मा के मन में क्यों एकाकीपना आया। तो ये सब कोई बात नहीं है, समझाने के लिए समझने के लिए ये व्याख्याएं हैं। उसके मन में रमण करने के तो खुद ही रमण रूप ही है, तस्य भाषा सर्विदम विदात, उसके आनंद से ही सब आनंद देते हो, वो बेचारा काय को आनंद नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन जैसा हमने आपसे बताया है, इट्स सिंपली ए वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करने का एक माध्यम है, क्योंकि सृष्टि दिखाई पड़ रही है। अब सृष्टि क्यों है, क्या करें, तो यही कुछ एक अपनी बुद्धि से उपाय लगा दिए हैं। जैसे सृष्टि एकदम नहीं है, वैसे ये वाक्य भी उसमें एकदम नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझने की चेष्टा इसलिए की जाती है कि जैसे द्वितीया का चंद्रमा, ईद का चांद, इस बार हम तो मिस कर गए भाई बादल इत्यादि के कारण, लेकिन हमारे मित्रों ने ईद मनाई तो हमको लगा चांद दिखा होगा और उसके अनुमान कर लेते हैं। द्वितीया का चंद्रमा बहुत महीन होता है, उसको खाली आंखों से देखना संभव नहीं है, पूरे आकाश में। हमारे कुछ संत हैं, उनको बड़ा अच्छा अभ्यास है, फट से देख लेते हैं। तो जिसने द्वितीया का चंद्रमा देख लिया, अब वो कहता जय श्री कृष्ण, कहे कि जय श्री द्वितीया चंद्रमा दर्शन हो रहे हैं। कहा वो वहां कहा, अरे वो क्या है सामने, तो नहीं समझ आएगा। तब वो कहेंगे बाबूलनाथ मंदिर के शिखर के ऊपर जो ऊपरी वाला त्रिकोण है, त्रिशंकु है, उसके ऊपर जरा दो अंगुल हट करके देखो, दाहिनी तरफ स्टील के हंसिया की तरह चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। हंसिया जानते हो, पता सूख है गुजराती में, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता जिससे घास काटते हैं, साताड़ू, हाँ ताताड़ू, दाताड़ू। अच्छा दातरी तो ठीक है, हमारे यहां उसको दातरी कहते हैं, आप दाताड़ू कहते हो, ठीक है एक ही बात है। दराती हमारे यहां कहते हैं उसको, दराती भी कहते हैं, तो दराती दाताड़ू। तो वो है। अब एक आदमी जिसने सपोज करो मंदिर कभी देखा नहीं है, उसको मंदिर के बारे में मालूम नहीं है, बाबुलनाथ क्या चीज है उसको वो नहीं जानता है, मंदिर नहीं जानता, शिखर भी नहीं जानता है। अब वो पूछेगा ये क्या चीज है जो आप बाबुलनाथ के मंदिर का शिखर के ऊपर त्रिशंकु कह रहे हो, तो अब उसको वर्णन करो बाबुलनाथ माने क्या। तो वो विश्वनाथ हैं, परमात्मा हैं, भोलेनाथ हैं, दुनिया भर के वर्णन जितने वर्णन करना चाहो करो। भोलेनाथ का, बाबुलनाथ का वर्णन हम कर रहे हैं, उसका चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं, दो पैसे का भी, लेकिन पहले बाबुलनाथ का वर्णन कर रहे हैं, उपाय नहीं। जब बाबुलनाथ को जान गए तो मंदिर का वर्णन कर रहे हैं, मंदिर सू, तो फिर मंदिर सू मैंने बताओ उसको, ये देवस्थान होता है, वहां भगवान की स्थापना होती मध्य में, और दुनिया भर के वर्णन जो मंदिर के हैं वो पूरा शास्त्र मंदिर शास्त्र बताओ उसको, मंदिर शास्त्र बताया, फिर उसको कलश शास्त्र बताओ वो क्यों होता है, वो क्या प्रतीक है ये सब। जब कलश शास्त्र बता दिया, फिर ऊपर उसके कलश नीचे कमल होता है, फिर ऊपर लोटा जैसा होता है, फिर तसली जैसी होती, फिर ऊपर त्रिशंकु जैसा होता है और शंकु जैसा होता है। जब इतना वर्णन किया तब उसको देखा, देखो ये बाबुलनाथ का मंदिर, ये देखो इसका शिखर, ये देखो ऊपर कलश, कलश के ऊपर देखो वो शंकु आकार का वो, हाँ दिख रहा है। अब उसके जरा दो अंगुल बगल देखना, हाँ अरे बड़ा सुख में बड़ा मजा आ गया, वाह 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 वाह, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब देखना है द्वितीया का चंद्रमा, और वर्णन किसका कर रहे हैं, बाबुलनाथ का मंदिर का, और कहीं उसकी खोपड़ी और तेज हुई तो पूछेगा क्या मैटीरियल लगा है इसमें, वो सब दुनिया भर के लगा लो अपने आप शास्त्र। अब उसको बाबुलनाथ के दर्शन हो गए, तब उसके माने द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन हो गए, तब उसका न कोई बाबुलनाथ से लेना देना है, न मंदिर से कोई लेना देना, न शिखर से लेना देना, उसने एक बार द्वितीया के चंद्रमा देखा, अब पति क्यों, पति क्यों कहे ना, पति क्यों। दूसरी जगह चले, फिर वही प्रश्न उठा कि ये द्वितीया का चंद्रमा कहाँ है, वो देखो हाई इलेक्ट्रिसिटी की हाई टेंशन वायर का जो पिलर खड़ा हुआ है ना, उस पिलर के ऊपर देखो जो राइट हैंड साइड पे थर्ड नंबर का ऊपर का हैंड है, उस हैंड का जो चौथे नंबर की वो गरारी है उसमें देखो उसके किनारे है। अब फिर अगर वो इस विषय से परिचित नहीं है तब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये बताओगे, हाई टेंशन वायर क्या है ये बताओगे, वायर क्या है, पिलर क्या है, उसकी आर्म क्या है, आर्म के नीचे वो नॉन कंडक्टिंग जो वो तसलियां लगी हैं गोल गोल वो क्या है, ये सब का वर्णन करते करते जब समझ में आ गया तो वो देखो द्वितीया का चंद्रमा। वाह धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, द्वितीया का चंद्रमा दिखा दिया। कितना वर्णन द्वितीया के चंद्रमा का किया? कोई नहीं। इसी तरह और उदाहरण, किसी को पीपल के पेड़ के ऊपर दिखाया, पीपल के पेड़ की दाहिनी शाखा में जो ऊपर प्रशाखा जा रही है उसके ऊपर लाल रंग के पत्ते की नोक के ऊपर द्वितीया का चंद्रमा देख लो। और क्या जितने वर्णन कर दे, इसमें कौन सा सही है वर्णन? जितने वर्णन हम किए, कौन सा वर्णन सही है? सब सही है और सब गलत है। सबके सब सही है और सबके सब गलत है। यही दशा यहां है। वर्णन वही है, एको हम बहुत श्याम, फैला और फैल करके सिकुड़ा। थ्योरी ऑफ बिग बैंग के अनुसार अत्यंत, उसके लिए कोई वर्णन उनके पास भी नहीं, साइंटिस्ट के पास भी कोई वर्णन नहीं है। ये जो एक गार्ड पार्टिकल वार्टिकल निकला था फुलिशनेस, वो कुछ नहीं है, माने वो चीज नहीं है बिग बैंग वाली। जो गार्ड पार्टिकल वगैरह की बात कर रहे हैं वो एक उसका एक आदि रूप समझो, जिसको हम लोग तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा तक उसको पहुंच सकते हो, तन्मात्रा से ही तो ये तत्व दिख रहे हैं। उससे भी स्थूल होगा मेरे ख्याल गार्ड पार्टिकल, जहां तक मैं सोचता हूं। बाकी उससे वहां तक पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सृष्टि को समाप्त होना पड़ेगा। जब तक सृष्टि समाप्त नहीं हुई तब तक वो चीज नहीं आएगी, निश्चित है। उसमें हर चीज, अगर कुछ भी आप बाहर रह गया तो वो चीज नहीं रही। वो जो चीज है, अब उसको चीज भी कहो तो भी गलत और नहीं कहो तो भी गलत, क्या कहें? तो हम चीज कह रहे हैं तो हमको समझने की कोशिश करना कि चीज भी कुछ नहीं है, न उसमें मोटाई है, न उसमें पतलाई है, न वो गोल है, न लंबा है, न सिलेंड्रिकल है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें शेप ही नहीं है। अरे यहां तक सोचो, एनर्जी कितनी सूक्ष्म है, लाइट कितनी सूक्ष्म है, लाइट भी उससे सैकड़ों गुना, हजारों लाखों गुना मोटी है, वो इससे भी सूक्ष्म। अब बताओ उसकी सूक्ष्मता का क्या वर्णन करें? तो उसमें बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। क्यों हुआ ये किसी साइंटिस्ट से पूछना हमको नहीं मालूम है। हम तो ईमानदारी कहते हमको मालूम नहीं, और उत्तर हम आपको बता दें, साइंटिस्ट भी कहते हमको नहीं मालूम है। Why there is Big Bang? No answer. लेकिन Big Bang के result दिखाई पड़ रहे हैं। वो minus करते 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 Big Bang तक पहुंचा जाता है 10^14, ये उसके टाइम का वो है। -14 कर दो तो और ठीक रहेगा, इतना समय उसकी कोई गणित नहीं है माई डियर। इतनी बड़ी संख्या बनेगी 0000000000014, उसमें विस्फोट हुआ, फिर वो प्रसारित हुआ, फैला। पहला स्टेज आई, दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उससे इस तरह से इवॉल्व हुई। फिर ये मॉलिक्यूल्स के सूक्ष्म तत्व पॉजिटिव और नेगेटिव और उस तरह से उत्पन्न हुए। ये बहुत संक्षेप में बताए दे रहे हैं। इसके बाद वो इकट्ठे हुए आपस में आकर्षण के कारण, तो उससे एलिमेंट्स के एटम्स बने। वो अत्यंत सूक्ष्म, इसलिए गैस की अवस्था में है। गैस की अवस्था से वो स्थूल अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त हुए, उसकी गर्मी निकलती चली जा रही है जब, तो वो लिक्विडिफाई हो गए। लिक्विडिफाई होकर के फिर जब और ठंडे हुए तो सॉलिडिफाई हो गए। तुम्हारी पृथ्वी थोड़ी थोड़ी सॉलिडिफाई हो गई और थोड़ी थोड़ी अभी भी लिक्विडिफाइड है। अगर इसके अंदर घुस जाओ 15-20 किलोमीटर नीचे तो अभी भी लावा पिघला हुआ मिलेगा। एकदम किसकी तरह बताऊं, गाढ़ी गाढ़ी चीज क्या होती है, उतनी गाढ़ी आम का जूस, आम के रस से भी थोड़ा गाढ़ा। और एकदम अंदर और चले जाओ तो वहां तो एकदम ही महीन पतला था, एकदम चमकीला, बहुत तगड़ा टेम्परेचर है वहां, तो सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफाई होकर के फिर आपस में उनमें ये हुआ, ये नाटक बन गया। यही नाटक फिर तो अब आप इसको हमारी लोगों की भाषा में सुनना है तो पहले उससे पंचतन मात्राएं हुई, मन बुद्धि चित्त अहंकार हुए, फिर तन्मात्राओं से पंच तत्व हुए, पंच महाभूत हुए, पंच महाभूतों में पंचीकरण हुआ, पंचीकरण हुआ तो फिर वो स्थूल रूप में आए, स्थूल रूप में आकर के और फिर कोई फलाने भाई, कोई फलानी बहन, कोई फलानी कार, फलानी मकान, ये सब के सब नाटक बन गए। तो जितनी भी ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है यही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था ये आकाश गंगा, समझते हो? आकाश गंगा कुछ कुछ लेटर्स हैं, ऐसे ऐसे पने व पुंजियों, जैसे बादल के टुकड़े पड़े होते हैं चारों तरफ। ये जो पृथ्वी है माय डियर, जिस आकाश गंगा के हम लोग पार्ट हैं, तो मुख्य जो आकाश गंगा का हिस्सा है चरखी जैसा, वो तो बहुत अंदर है, वहां तो हम लोगों को घुसने में भी करोड़ों साल प्रकाश के लग जाएंगे। टॉर्च जलाओ तो वहां तक लाइट जाने में, हेलो, तो वहां से अगर कोई हु स्पीकिंग पूछे तो इतने दिन में तो कई करोड़ साल गए। जैसे बलराम जी के फादर इन ला गए थे, पूछे अरे इस छोरी के लिए कोई हस्बैंड बताओ, भले आदमी तू इतनी देर में तो वहां तुम्हारे सब इतना टाइम बीत गया। तो उस आकाश गंगा के बीच में आप नहीं है, किनारे पे उसकी एक भुजा सी निकली है, उस भुजा के एक कोने में, और जैसे कोई कण होता है ना, एक कण की तरह तुम्हारा सूर्य है। उस सूर्य में इतनी सामर्थ्य है कि इतने नक्षत्रों को अपने चारों ओर घुमाते हुए विराजमान है। तो उतने बड़े सूर्य, ये अब अनुमान लगा, उतने बड़े सूर्य के आगे तुम्हारी पृथ्वी नींबू की जैसी भी नहीं है। अब उस नींबू की जैसी पृथ्वी की में कहां एशिया और कहां इंडिया और कहां बंबई, और बंबई में बाबुलनाथ ह्यूजिस रोड, और बाबुलनाथ ह्यूजिस रोड कार्डर में प्रेमपुरी आश्रम, और उसका थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर में और हम सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कहां गिनती आएगी, है कोई कोई ठिकाना? क्या वक्त है, लेकिन फिर भी इसकी सामर्थ्य तो देखो, वो संपूर्ण चराचर को अपने अंदर देखने की सामर्थ्य रखता है। ये सत्संग की महिमा है, क्योंकि ये उस सूक्ष्म का जिसका बड़े उसका एक पार्ट है, और पार्ट माने अब चाहे हमारे नाखून को छुओ और चाहे हमारे सिर के बाल को छुओ, किसको छू रहे हो? मुझे छू रहे। तो उसी तरह जो अनंत अनंत आकाश गंगा है, जिसके बारे में मैं भी कहने जा रहा था, मैंने सुना भी पढ़ा है रिसेंटली किसी में, कि एक आकाश गंगा में इतना चमकदार सूर्य है जो हमारे सूर्य से कितने करोड़ करोड़ गुना अधिक प्रकाश वाला और अधिक ऊष्मा वाला है। माने ये तो कोई पिद्दी सा है उसके सामने, और यही पिद्दी सा आकाश के ऊपर चमकने वाला सूर्य जरा गर्मी के दिनों में बाहर निकलो तो हवा बिगाड़ देता है। अभी हम लोग जगन्नाथ जी गए थे और मजा आ गया उस गर्मी में। तो ये सूर्य इत्यादि जिसके सामने हम लोग अत्यंत अत्यंत नगण्य हैं, इस आकाश गंगा में नगण्य है, और ये इतनी बड़ी आकाश गंगा उस समग्र चराचर में नगण्य है। कोई इस आकाश गंगा मैंने बड़ी है, इतने से पड़े कहिए भी, ये सृष्टि फैल रही है 186,000 मील प्रति सेकंड के अनुसार भी फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। ये विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा, फैलती चली जा रही है। इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो एक दूसरे से अलग हो, भिन्न हो, इसको भी समझ लो। आज साइंस की भाषा में हम लोग समझ लें तो फिर कल ये बातें जब हम कहेंगे तो आप ये नहीं लगे क्या पोंगापंथी की बातें कह रहे हैं कि शेषनाग के मुंह से लपटे निकलती हैं और ये सब के सब सिंबॉलिक है, इसमें वर्णन आएगा तो कई लोगों के दिमाग में कुड़कुड़ हो सकता है कि कहां शेषनाग, कहीं शेषनाग, शेषनाग कहीं नहीं, धरती है, लटकी हुई आकाश में, ये सब कल्पना है, उसकी बात हम लोग, लेकिन वो हम समझ लें इसके लिए साइंस की दृष्टि से हम लोग, आदत पड़ गई है ना साइंस की दृष्टि देखने से देख रहे हैं। तो हम क्या है, ये शरीर है, शरीर काहे से बना है, एलिमेंट्स से बना है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, करीब 100 कितने एलिमेंट्स हैं, 108 हैं कि थोड़े, 112 तक पहुंचना है, मैं चार जगह खाली है अभी, पीरियाडिक टेबल के हिसाब से बता रही है। यस, तो पीरियाडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी गणना की गई है। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन H, और सबसे आखिरी क्या मुझे मालूम नहीं है, हमें नहीं मालूम है। ये H, फिर 16वें नंबर पर ऑक्सीजन है, 16वें पे है ना, 16 नंबर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक नंबर पे, उसमें एक परमाणु में एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, यही ना एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी कुछ होंगे। तो एक एक एलिमेंट जो बढ़ता जाता है उसका मॉलिक्यूलर नंबर बढ़ता चला जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि 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 इत्यादि। तो एक परमाणु में या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में फर्क क्या है, केवल मॉलिक्यूलर नंबर का है। अगर मॉलिक्यूलर नंबर को बदल दिया जाए किसी भी तरह से तो वो एक वस्तु दूसरी वस्तु में बदल जाएगी। ये विद्या हमारे यहां आती थी, इसका तो हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर में एक लेख लिखा हुआ, पत्थर में लिखवा के लिख दिया गया ताकि सनद रहे, नागार्जुन का वर्णन करके उसके नीचे लिखा है, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यमयं जगत। तो वहां सोना बनाने की विधि का इतिहास लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे, क्या नाम, महावीर भाई देसाई और गोस्वामी जी सनातन हिंदू महासभा के, वो और 3-4 जने बड़ो नाम, उसके सामने उपाध्याय उनको हमने देखा वैद्य जी जो बनाया था, उन्होंने 20 शेर पारा से, किलोग्राम नहीं आए थे, 20 शेर पारा से 18.25 शेर सोना बनाया था। ये जो ऊपर दुर्गा जी का मंदिर है ना, उसकी इधर तरफ लगा हुआ है, जाना बच्चों को दिखाना जाकर के इस बार, तो दुर्गा जी ऊपर बैठी इस तरफ जिधर नंदीश्वर है उस तरफ टूवर्ड्स ईस्ट वो लगा हुआ है। तो वहां इसका वन, तो नेपाल से कोई इतनी बड़ी चीज लाए थे, उसमें से पारा गरम किया, इतना सा वो उसमें चूरन डाला, भूरी भूरी भूरे रंग की उसमें से भाप निकली और 18.25 शेर सोना बन गया था प्योर, और उसको टेस्ट करके बेचा गया था 75,000 या कितने हजार रुपए उस जमाने में मिले थे। ये घटना इसलिए कह रहा हूं कि प्रामाणिक लोगों के सामने घटी हुई घटना है। अब गैर प्रामाणिक आदमी के सुन लो, हमको एक महात्मा मिले थे जिनको सोना बनाने की विद्या आती थी, उन्होंने हमसे कहा तो बच्चा सीख लो, ये हर एक को देने लायक विद्या नहीं है। एक्चुअली हमारे यहां पारा को मारना बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, शिव का स्पर्म समझते हैं, जो जैसा भी है, उस कारण से नहीं, मैं तो अपनी कमजोरी से नहीं सीखा। वो बालियां गांव है धूरी जिले में पंजाब में संगरूर के पास, वहां वो रहते थे, चांदी और सोना दोनों बनाना उनको आता था। चांदी का तो एक सिक्का कहते मैंने टेस्ट के लिए बनाया और बाजार में चलाया तो चल गया, तो वो कह रहे केवल मैंने एक बार बना के परीक्षा की है, बाकी मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। मैं छोटा था उस समय, वो तो वृद्ध थे, हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, था क्या तक नहीं है उस समय की बात तो छोड़ो। हमने कहा बाबा हम नहीं सीखेंगे, हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं। तो बड़े खुश हुए, कहने इसीलिए तो मैं तुमको सिखा रहा हूं कि तू सीख ले तो विद्या बची रहेगी। मैंने कहा विद्या भले नाश हो जाए, मेरे नाश होने की तुम रक्षा करो। यद्यपि उनको कष्ट हुआ कि वो विद्या एक कोई व्यक्ति मिला जिसको देना चाहते हैं, लेकिन उससे प्रसन्न भी हुए कि तुमने सीधे सीधे मना कर दिया, इससे हमको लगता कम से हमने तुम्हारी पहचान ठीक की थी। तो सोना बनाने की विद्या है, अब कैसे वो भी बता दो, तुम साइंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो बता दूं। सोना हमारे यहां दो चीजों से बनाया जाता है, थोड़ा बहुत तो मालूम है, लेकिन हमको अरेस्ट मत कर लेना कि बनाओ, हमको आता नहीं बनाना। नहीं कोई सोलिड को सोना बना रहा था, कहते चलो महाराज आप रहो चल के आपके लिए सब इंतजाम कर दे, हमको सोना बना के देते तुम मौज मारते, तुम मुझे आता बाता नहीं है। लेकिन बनता है ये लेड से पीवी और एचजी इनसे बनता है। पहले हमको मालूम था, एक दिन हमने पीरियोडिक टेबल फिर से देखी तो एचजी पीबी और एयू, एयू माने सोना, ये तीनों एक साथ पीरियोडिक टेबल में है। मॉलिक्यूलर नंबर इनका बहुत थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा निकाल लो और थोड़ा सा डाल लो, काम हो गया। ये घटना, ये बात हम इतने विस्तार से क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि एलिमेंट्स में कोई भेद नहीं है, सारे एलिमेंट्स एक है। तुम चाहो हाइड्रोजन से सोना बना लो, अगर अकल है तो बना लो, पारे से तो बनी हुई बात हमने आपको बताई दी। और ये हमारे ये जो तांत्रिक विद्या वाले थे, रसायन सिद्ध वाले विद्या, ये अधिकतर लेड से बनाते थे। लेड माने शू कहें हिंदी में, शीशा, शीशा तो मेटल मर्चेंट की पत्नी है ना, इसे इसको मालूम है, तो शीशा से, तो शीशा का भी सोने में बदलना बड़ा आसान है। आज आज महोबा सब लायक है, छकड़ा लोह स्वान हो ही जाए, माने छकड़ा माने बैलगाड़ियों में भर भर करके। और उस समय कई बार इन रसायन सिद्धों ने राजाओं की मुसीबत के समय उनकी सहायता भी की है, लेकिन उतना विवेक हमें नहीं है, इसलिए पुनः कहता हूं हम सीखे नहीं। हमको लगता है कभी कभी सीख लिए होते तो कम से कम शायद विद्या बची रहती, लेकिन शायद विद्या के बचाने में वो कहीं महात्माई जयश्रीकृष्ण हो गया होता तो क्या होता। दोनों तरह से, या तो हम ही फंस जाते या हमको कोई फंसा लेता मालूम हो जाता, चलो महाराज आपको हम सब इंतजाम करके देंगे, अभी जा कर देगा हमसे, खबरदार बाहर निकले बड़ा बढ़िया जेल हो जाते। तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक हैं, अच्छा सारी की सारी एनर्जी एक है। हम साउंड एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें गई मैग्नेटिक एनर्जी में हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हुई, वहां जाकर के और फिर साउंड एनर्जी में परिवर्तित हो गई, कोई भेद है? इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी पैदा हो गई, हीटर लगाया, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पैदा हो गई, थर्मल पावर स्टेशंस। तो ये जितनी एनर्जीज हैं वो इंटर कन्वर्टेबल है, कोई अंतर नहीं, इसको इसमें बदल लो, इसको इसमें बदल लो। तो पहले 20s के पहले तक पदार्थ और शक्ति, मैटर और एनर्जी के दो के रूप में यह संसार माना जाता था साइंटिस्ट के द्वारा। कुछ लोग क्षमा करेंगे, आज से केवल इस ढंग से बात करने का तात्पर्य है कि भागवत में कुछ वर्णन इस तरह के आए हैं जिनको पढ़ के आपको लगेगा ये क्या चीज है, तो वो आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं, और कोई अपनी वो दिखाने के लिए नहीं। तो 20s के बाद 30s के आसपास एटॉमिक फ्यूजन जब हुआ, तब एटॉमिक फ्यूजन से ये पता चला कि मैटर कुड बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये है उसका फॉर्मूला। तो मैटर से एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है। बहुत वर्ष हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अग्रवाल गए थे हमारे पास, मुझे उनका नाम नहीं, उन्होंने कुछ नंबर बताया मैं भूल गया, कि महाराज अगर मैटर से, हमने कहा, मैंने उसमें से ही कहा कि अगर मैटर से एनर्जी बदली जा सकती है तो एनर्जी से मैटर भी बन सकता है, एक ही बात है। तब उन्होंने हमको बताया था कि इतनी कम्पैक्ट एनर्जी हो जाए तो मैटर बन जाएगी, हम भूल गए क्या नंबर बताया था। हमारे मतलब की बात यहां ये है कि संसार में मैटर है सब कुछ, एनर्जी है सब कुछ, क्या है सोचे, मैटर छे कि एनर्जी छे, बनने छे और बनने नथी, ये सबकी सब एक स्टेज है। जब उस स्टेज को तुम क्रॉस कर लोगे तो यू आर अद्वितीय। ये साइंस की दृष्टि से, शुद्ध विज्ञान की दृष्टि से हम लोगों ने यह चर्चा की है। संसार में दूसरा कुछ नहीं है। जो एक तुच्छ से तुच्छ प्राणी यहां माइक के सामने बैठा दिखाई पड़ रहा है, इसकी सामर्थ्य यह है कि समस्त सृष्टि को अपने अंदर समेट सकता है। जहां तक लाइट को पहुंचने के लिए कितने करोड़ वर्ष लगेंगे, हे परमात्मा, जो हमको दिख रहा है ये वहां पर इतने करोड़ वर्ष पहले था, वहां है कि नहीं क्या पता, वो जल गया कि खाक हो गया, कहां हट गया, इतने करोड़ वर्ष पहले वो वहां था, इसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं। अब क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहीं कुछ नहीं, वहां है होगा तब तक, इतने दिनों से कब के कब का कहां पहुंच गया होगा। तो आशय क्या है, ये एको हम बहुश्याम, वो यही है, वही एक तत्व इतने रूपों में बदल गया है। और कौन बदला है, कोई दो चीजें हैं क्या? वही बदलने वाला भी है और वही स्वयं बदला भी है, वो बाहर भी है और अंदर भी है। अब जो ये हम बोल रहे हैं साइंस की दृष्टि से, आपको उपनिषद की कुछ भाषा याद आ रही है, तत्सृष्ट्वा तद अनुप्राविशत स अंतर बहिश्च। क्या भेद है? वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। अनोरणीयान महतो महीनिया। तो हम लोगों ने इसको विज्ञान की दृष्टि से समझा तो वही परमात्मा समय हो गया। गुणई गुणांश भुंजाना आत्म प्रद्योतित प्रभो, अपने आप ही प्रेरित करके प्रभो इंद्रियों के द्वारा विषयों को भुंजाना भोगता हुआ इस सृष्टि को अपना रूप समझ लेता है। गलती यहां हुई। वैसे तो एक दृष्टि से देखो तो सृष्टि हमसे अलग थोड़ा है, हम ही बने हैं, लेकिन वो काल्पनिक है, थोड़ी देर की है। उसको समझ लेने के कारण हम दुखी और सुखी होंगे, हम असली रूप क्यों ना देख लें। तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि ये सृष्टि मैं हूं, सृष्टि को अपना समझने लगता है। यहीं से माया का शुरुआत हो जाता है। तो जब माया का हो गया तो कर्म भी कर्माणि कर्म भी कुर्वन सन्निमित्तानि देहव्रत। तो वो देहव्रत माने देह को धारण करने वाला, माने अपने आप को देह समझने वाला आदमी संकल्प पूर्वक इसका फल ये। हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि जैसे व्यापारी इस फायदा केटलू छे के फायदा ये सोच करके काम करता है, अगर फायदा नहीं है तो हटाओ। तो उसी तरह से क्या फायदा होगा ये सोचते हुए तत्त फायदा उसको भोगो। तो तत्त कर्म फलम ग्रहणन, जो अपना व्यापार किया उससे जो प्रॉफिट हुआ, अब उसे चाहे चार हो वाली गाड़ी ले आओ। हमको ये बड़ा अच्छा लगता, हमको जो वहां गए थे तो एक गांव वाला कह रहा था, वो गुजराती में ही कह रहे थे, वहां ये अपना अमूल अमूल डेयरी है ना जहां, वहां की बात है, आनंद आनंद के पास का कोई गांव रहता। वो पता नहीं क्या वो चार गोले को क्या बोला उसने, बगड़ी, अच्छा चार बगड़ी, हाँ तो चार बगड़ी वाली गाड़ी। उसको मालूम नहीं था कि आउडी आउडी कोई जीवन, चार बगड़ी वाली गाड़ी जो ये तत्त कर्म फलम उसके पास लौट आ गए। भ्रमती है सुखे तरम, सोचता है कि चार बगड़ी वाली गाड़ी ले गए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। और फिर चार बगड़ी वाली गाड़ी कितना सुख देती ये तो आप सब गाड़ी वालों को पता है, और हम बिना गाड़ी वाले इसलिए हमको भी पता है। तो ये सृष्टि जो है उसका, अब ये तो सृष्टि बताई, अब सृष्टि के बाद इसका लय कैसे होता है। इत्थम कर्म गतिर गच्छन बहवा, ये हमको आज ये बताना है आगे। इसके लिए आज की भूमिका आप लोग याद रखना, क्योंकि इतने विस्तार से फिर इसकी चर्चा करना रोज रोज शक्य नहीं है। तो आज हमने साइंटिफिकली सृष्टि और प्रलय को समझ लिया है, तो उसी के हिसाब से धातु पपला आसन्न, धातु पपला आसन्न द्रव्य गुणा आसन्न व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनाद निदना कालो है व्यक्ता अपकर्षति। ये प्रलय कैसे होगा इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर न प्रलय है न सृष्टि है, वो तमाशा फिर आगे आएगा। तो आज हम लोग यही करते हैं, आज प्रलय काहे को की जाए, यही बड़ा सृष्टि का ही अंदर। श्री रमण बिहारी लाल की जय।